ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम.आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळैयाडल पुराण की 14वां भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
बच्चों, हमने देखा कि भानभद्र की भक्ति से भगवान शिव जी इतने संतुष्ट हुए कि एक साधारण लकड़हार के वेश में आकर मदुरै को बचाया, नहीं तो उस घमंडी भानभद्र के हाथों पूरी राजधानी आ जाती थी। बच्चों, हम अब तक महादेव की 40 लीलाएं सुन चुके हैं। इनमें कुछ बहुत ही छोटे थे, कुछ बड़े, महत्व में सभी परिपूर्ण थे।
भानभद्र संबंधित तीन और घटनाएं ऐसे ही जिनमें श्री महादेव ने अपनी करुणा दिखाई। एमनाथन के जाने के पश्चात भानभद्र की भक्ति की सीमा ही नहीं रही। दिन रात मंदिर में ही समय बिताते और भगवान के गुण गाते रहते थे। भगवान से इतना प्रेम हो गया कि राज दरबार में आना ही छोड़ दिया। राजा की तरफ से धन आना भी रुक गया। पति और पत्नी को गरीबी सहना पड़ा, फिर भी भानभद्र मंदिर नहीं छोड़ा। अब शिव जी अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहा। उसके सामने बहुत सारे धन दौलत जेवरात आदि रख दिए। भानभद्र बहुत आनंदित हो गया। मूर्ख की तरह उसने सारी संपत्ति व्यर्थ में खर्च कर दी। अब उसे भगवान के सामने आने में भी शर्म आई। फिर भी पति पत्नी दोनों ने भगवान से क्षमा याचिका की।
शिव जी अशरीरी वाणी में बोले, तुमने गलती कर दी, फिर भी तुम अपनी गलती को स्वीकार करके सुधरने के लिए तैयार हो गए हो। अब फिर से चेर देश जाओ और राजा को यह मुद्रा दिखाकर धन इकट्ठा करो और उस धन को केवल अतिथि सत्कार के कार्य में ही खर्च करो। भानभद्र अब सुधर गया और उसने वही किया जो उससे कहा गया था।
भानभद्र मंदिर जाकर भजन कीर्तन करना कभी नहीं छोड़ा। एक बार इतनी बारिश हुई कि मंदिर के अंदर भी बाढ़ आ गई। सब लोग अपने अपने घर पर ही बंद थे। भानभद्र को यह भी मालूम नहीं था कि उसके घुटने तक पानी चढ़ गया है। अब तो भक्त को बचाना भगवान का कार्य बन गया। उन्होंने भानभद्र के नीचे एक लकड़ी की पटरी रख दी, उसके वाद्य के लिए भी एक ऊंचा स्थान दिया।
भानभद्र की पत्नी भी अच्छी गायिका थी, उसे लोग पाड़िनी यानी गायिका ही कहकर पुकारते थे। एक बार राजराज पांडियन ने राज दरबार में संगीत की प्रतियोगिता रखी। लंका से एक कवयित्री आई थी जो बहुत सुंदर भी थी। राजा ने मोह के वश में आकर कवयित्री को विजयी घोषित कर दिया। लोगों ने आपत्ति उठाई। सभी ने मंदिर में भगवान के सामने प्रतियोगिता करने का आग्रह किया।
मंदिर में जब सब लोग इकट्ठे हुए तब उनके सामने लंका की कवयित्री जिसका नाम था विरली गाई। उसका गाना बहुत ही अच्छा था और सबको वश में करने वाला भी था। लेकिन जब पाड़िनी गाई तो सबकी आंखों से आंसू भर आए। ऐसा लग रहा था कि स्वयं भगवान ही प्रत्यक्ष हो। जब गाना पूरा हो गया तो आंगन में सबने एक दिव्य शांति का अनुभव किया।
उस सभा में वह लकड़हारा भी था जिसने एमनाथ को भगाया था। उन्हें देखते ही राजराज पांडियन पहचान लिया कि वे महादेव ही हैं। पिछली बार जब उसने उन्हें देखा था तब वह युवराज था और अपने पिता वरगुण पांडियन के साथ खड़ा था। अब उनको देखकर पहचानते ही उसके मन में परिवर्तन आई। उसने विरली को धन और संपत्ति तो दी लेकिन पाड़िनी को विजयी घोषित कर दिया। सभा में उपस्थित सभी मान्य लोग इस घोषणा से खुश हुए। इस तरह भगवान के गुणगान करने वालों की कभी भी हार नहीं होता।
राजा ने भी पाड़िनी को सम्मान से घर भेजा और कहा कि उस दिव्य गान गाने वाली को कोई किसी भी तरह का दुख न पहुंचाए। सच्ची भक्ति की ऐसी महिमा है। हमने देखा था पूरा विश्व को भगवान ने रचाया है, तो उसमें जन्म लिए हर एक जीव का उदाहरण भी उनका ही कार्य बनता है। उसे वे करुणापूर्ण हृदय से करते हैं। इसे समझाने के लिए भगवान ने एक लीला की।
एक पक्षी था जिसका रूप बहुत ही विचित्र था। आधा कौवा और आधा एक चिड़िए के रूप में था। कौवे के वर्ग उसे न अपनाया, न ही चिड़ियों के वर्ग। अकेले में वह पक्षी तरसता था। जंगल में एक पेड़ की डाली पर दिन बीतने लगा। एक दिन पेड़ के नीचे कुछ यात्रीगण आराम करते हुए आपस में बातचीत करने लगे।
अचानक ही उनकी भाषा उसे समझ में आई। वे मधुरे और चक्कनातर की महिमा के गुण गाने लगे। उनकी बात सुनते सुनते पक्षी को अपने पूर्व जन्म के बारे में सब याद आ गया। उसने एक घोर पाप किया था जिसकी वजह से उसे यह कुरूप मिला था। अब उसका प्रायश्चित भी उसे याद आ गया। वह गगन में उठते हुए मदुरई आ पहुंचा।
वहां वैगई नदी में स्नान करके मंदिर में गया। गोपुरम के ऊपर बैठकर भगवान से प्रार्थना की। अपने कुकर्मों के लिए क्षमा मांगी, न खाया न पिया।
देवी मीनाक्षी को उस पर दया आई। भगवान चक्रनाथ से कहा, हे देव, आप किस लिए इस पक्षी को दंड दे रहे हैं? पहले ही अपने कुरूप देह से वह पीड़ित है। अब इस मंदिर में आकर भूखी और प्यासी है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है।
शिव जी ने कहा, देवी, पिछले जन्म में उसने बहुत दान तो दिया, लेकिन उसने अधर्म मार्ग में धन इकट्ठा किया था, इसलिए उसे ऐसा देह मिला है। उसे अपने पूर्व जन्म का याद आ गया है और प्रायश्चित भी कर चुका है। उसे अब मुक्ति मिल जाएगी। बच्चों, इसी तरह शिवजी ने और एक सारस पक्षी की भक्ति से संतुष्ट होकर उस पर कृपा की। पांड्य राज्य के गांव में एक छोटा सा तालाब था। उसमें एक सारस रहता था जो उस तालाब की मछलियों को खाकर जी रहा था। तालाब जब सूख गया तो दूर के एक और जंगल के तालाब में रहने का निश्चय किया।
वहाँ वातावरण में शांति छाई थी। तभी उसने देखा कि वहाँ मुनिगण तपस्या कर रहे थे। उस तालाब की मछलियों को खाकर उस पवित्र वातावरण को दूषित नहीं करना चाहा, इसलिए वह भूखा ही रह गया। मुनिजन शिवजी के गुणगान करने लगे। इसे सुनते ही सारस को अपना पूर्व जन्म का याद आ गया।
वह सीधा मदुरई में मीनाक्षी मंदिर जाकर तपस्या करने लगा। मंदिर के कंचन कमल के तालाब में बहुत मछलियां थी। उसे देखकर खाने का मन हुआ, फिर भी बड़ी प्रयास से अपनी इच्छा को नियंत्रण में रखा। उसकी तपस्या और तेज हुई।
भगवान अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उस सारस से जी चाहे वर मांगने को कहा। सारस पूर्व जन्म में एक संत था। इस तपस्या से फिर से संत बनने की ही उसकी इच्छा थी, लेकिन भगवान को देखते ही वह सब कुछ भूल गया। बस यह वर मांगा कि उस सोने के कमल के तालाब में एक भी मछली नहीं होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में सारस पक्षियों उसे खाकर और पापी नहीं बने।
भगवान ने तथास्तु कहा और सारस को भी मुक्ति दिलाई। कहा जाता है कि इसी कारण इस मंदिर के सोने के कमल के तालाब में आज भी एक भी मछली नहीं है।
ऐसा भी हुआ है जब सुबह जिन्हें हम अत्यंत घृणा करते हैं, उनका भी भगवान ने उद्धारण किया है। एक गांव में कुछ सुअर के बछड़े जन्म लेते ही उनकी माँ सुअर मर गई। उन्हें दूध देने वाला कोई नहीं था।
तब शिवजी एक किसान के वेश धारण कर उन्हें पाला। उन्हें मालूम था कि ये सुअर पिछले जन्म में वे शरारती बच्चे थे और माता पिता का कद्र न करते थे। बड़े होकर पूरे गांव वालों को तंग करते थे, फिर भी बड़े बुद्धिमान थे। चाहे तो समस्याओं के लिए अच्छे भी सुझाव देते थे, लेकिन उनके बर्ताव के कारण गांव के लोग उन्हें घृणा करते थे। इसलिए अब सुअर जैसे जन्म लेकर कष्ट उठा रहे हैं।
शिवजी ने उन्हें जान दी और उन्हें यह भी समझाया कि ये सुअर मंत्री भी बन सकते हैं। सुअर के बछड़े भी अपने पिछले जन्म के कर्म पर पछताया और अगले जन्म में अच्छे इंसान बने। इतना ही नहीं, वे मंत्री भी बने जिन्हें राजा का सम्मान भी मिलता है।
अगली कड़ी में मिलेंगे।